ओम शांति। बहुत सुंदर विषय अभी का है, कालचक्र का गुही रहस्य। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर ये गीत सुना कि जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, और शायद हर कोई इंसान यही चाहना रखते हैं कि हर पल हमारी खुशियों से भरी हुई हो, खुशियों से हम गुजारे। लेकिन फिर भी जीवन में कई ऐसी बातें परिस्थिति आ जाती है, तो उस समय के लिए यही अक्सर लोग कहते हैं कि ये समय का प्रभाव है। समय के लिए बहुत सी बातें कही हुई है दुनिया में कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। और एक सवाल हरेक के मन के अंदर अक्सर उत्पन्न होता रहता है, जब कोई घटना कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो लोग हमेशा यही पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी से बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये सवाल उठता है और उसका जवाब मिलता है। जब जवाब नहीं मिलता है तो कितना फ्रस्ट्रेशन आता है। कई बार लोग भगवान को भी दोष देने लग जाते कि भगवान भी ऐसा ही करता है। आज उसी प्रश्न का जवाब है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। उसके लिए ये समय के चक्र को समझना आवश्यक है कि समय हमसे कुछ न कुछ मांग करता है, कुछ डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? तो समय परिवर्तनशील है, और इसीलिए समय हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है। तभी तो किसी ने बहुत सही कहा है, If you cannot change according to time, time will force you to change. And that will be a painful process. अगर समय के साथ हमने परिवर्तन को नहीं अपनाया तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं, समय की मजबूरी है, परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। और उसके बावजूद भी अगर परिवर्तन को नहीं अपनाया तो समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है, वो काल तो क्या महाकाल का रूप भी ले लेता है। वो उस व्यक्ति के अस्तित्व को इस संसार से मिटा देता है जो समय के हिसाब से अपने परिवर्तन को नहीं अपना सकता है। तो समय क्या कह रहा है? आज मैनेजमेंट में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर हो गया है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। लोग समय को मैनेज करना चाहते हैं, बिना समय को समझे कैसे मैनेज करेंगे। लोग टिप्स दे देते हैं कि रोज सुबह उठ करके प्लानिंग करो, प्रायोरिटी को सामने रखो, उसको अपनी लिस्ट में, टू डू लिस्ट में लगा दो, उसके बाद लेस प्रायोरिटी की चीजों को बाद में करो, तो आप मैक्सिमम सदुपयोग समय का कर सकते हैं। लेकिन अनुभव ये कहता है कि जिस दिन ऐसा प्लानिंग करता है व्यक्ति, एक दो चीजें तो उस समय के प्लानर के हिसाब से कर लेता है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता है, और इस तरह से वो समस्या या परिस्थिति सामने आ जाती है और सारा समय हमारा उसी में चला जाता है। दिन के अंत में उस प्लानर को देखते हैं हम तो लगता है कि आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। और इस तरह से जीवन में एक एक दिन निकलता जाता है और समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इसलिए कहा, समय क्या कह रहा है? समय हमेशा संकेत जरूर देता है क्या करना होता है, क्या करना चाहिए उसके लिए। लेकिन जो व्यक्ति समय के संकेतों को नहीं समझ पाता है तो फिर समय हाथ से निकल जाता, बाद में अगर होश भी आता है तो क्या कहते हैं, अरे समय का पंछी तो उड़ गया, जिस समय करना चाहिए था उस समय तो किया नहीं, अब फायदा क्या। तो समय के साथ इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, और इसलिए कहा जाता कि परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अंडरस्टैंड टाइम, समय के संकेत को समझो, समय हमको क्या कह रहा है। समय का चक्र कहा जाता है काल चक्र। चक्र माना जो नित्य चलता है, चक्र माना जिसकी आदि और अंत नहीं होती है, जो नित्य चल रहा है। इस समय के चक्र के अंदर जितने भी चक्र बने हुए हैं सब नित्य चलते हैं। दिन और रात का चक्र देख लो, निरंतर चल रहा है। ऋतुओं का चक्र देखो, वो भी निरंतर चल रहा है। कुदरत की साइकिल को देखो, पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते, वो बादल बरसते, फिर वो नदियों के द्वारा पानी समंदर में आकर मिल जाता है, ये चक्र भी चलता रहता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र भी चलता रहता है। तो कुदरत के जितने भी बने हुए चक्र है सब नित्य चलते हैं, किसी की भी आदि और अंत नहीं है। हाँ, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रात को 12 बजे ही ये चक्र शुरू हुआ था, नहीं पता ही नहीं है। और हमने अपने जीवन को भी उसी में ढाल दिया और चल रहे हैं, कोई सवाल नहीं। हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र की भी चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। इसी तरह ऋतुओं के चक्र की भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, वसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म पुनर्जन्म की भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। ऐसे ही काल चक्र की भी चार अवस्था है, जिसको कहा जाता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चार युग है। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं कि घोर पापाचार का युग सतयुग में कैसे बदल जाएगा, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस प्रकार घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदल जाती है, वो सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। कुदरत की रचना में इस तरह सेटिंग्स है कि धीरे धीरे वो अमावस्या की रात भी सुनहरी सुबह में बदल जाती है। ठीक इसी तरह कुदरत की रचना में ही ये सेटिंग है कि घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में बदलनी ही है, क्योंकि ये मनुष्य का कार्य नहीं है जो डिले हो सके उसमें। परफेक्ट टाइमिंग पर ये संसार का चक्र चलता है, लेकिन हाँ, हर चक्र की एक अवधि जरूर है जिसी में वो साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में ही ये टोटल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ये नहीं कि एक दिन 24 घंटे में पूरा होगा तो दूसरे दिन 30 घंटा लगाएगा, नहीं, परफेक्ट उसका सेटिंग किया हुआ है कुदरत का। ऋतुओं के चक्र को एक साल लगता है, एक साल में ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब 5000 साल सुनते हैं तो कईयों के मन में इतने प्रश्न आ जाते हैं, 5000 कहां से आया, किसने कहा, शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल के लिखे हैं, आप 5000 कैसे कहते हैं, क्या सबूत है, है ना? हम एक ही सवाल पूछते हैं कि लाखों साल का एक एक युग है, उसका कोई सबूत है, कैसे मान लिया बिना सबूत के? 5000 का तो सबूत है हमारे पास कि 5000 कहां से आए, कैसे आए। वैसे देखा जाए तो इस संसार में सबूत किसी चीज का नहीं मिलेगा। 24 घंटे का क्या सबूत है? जिसने भी ये चक्र निर्माण किया 24 घंटे का, 60 सेकंड की एक मिनट बनाई, 60 मिनट का एक घंटा बनाया और इस तरह 24 घंटे में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये 60 फिगर कहां से आया? अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाता था तो नहीं चलता था, चलता था नहीं चलता था, चलता ही था, घंटे कम हो जाते थे। 100 मिनट का एक घंटा बनाता था तो घंटे कम हो जाते थे, कोई फर्क थोड़ी पड़ना था, ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, 25 घंटे में बांटो, 30 घंटे में बांटो या 20 घंटे में बांटो, उसमें तो कोई अंतर होने वाला नहीं था। लेकिन कभी हमने प्रूफ मांगा कि ये 24 घंटे किस बेसिस पर कैलकुलेट किए गए? स्वीकार कर लिया, सारे संसार के लोगों ने स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को उसी अनुसार ढाल करके चल रहे हैं। इसी तरह ऋतुओं का चक्र एक साल, और साल में कितने दिन? 365 दिन। किसने कहा? साइंस ने कहा और हमने स्वीकार कर लिया। और इस तरह से 12 मास का कैलेंडर बन गया, इंग्लिश कैलेंडर 365 दिन का। कोई प्रूफ है? नहीं, स्वीकार कर लिया। अगर हिंदू कैलेंडर को देखें तो साल में कितने दिन होते हैं? 3 साल के बाद अगर अधिक मास आता है, एक मास बढ़ जाता है, तो साल में कितने दिन होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? हाँ, हाँ, 360। हम हिंदू हैं ना सभी? हिंदू कैलेंडर मालूम नहीं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 354 दिन, साल में 354 दिन होते हैं। और हिंदू कैलेंडर भी जो बना है वो भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। अगर भारत जीरो नहीं देता था तो मॉडर्न साइंस विकसित नहीं होता था। और आज भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब पूर्णमासी और अमावस्या आती है तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है ज्वारभाटा के रूप में, इतना परफेक्ट और एक्यूरेट है। फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? इंग्लिश कैलेंडर को। लेकिन भारत वालों ने दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर और अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना हिंदू कैलेंडर पर। ये तो नहीं कहा कि इंग्लिश कैलेंडर सही है, मॉडर्न साइंस ने कहा इसलिए हिंदू कैलेंडर को भी फाड़ के फेंक दो। कहा क्या? नहीं। और ये भी नहीं कहा कि हिंदू कैलेंडर सही है तो इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, जबकि कितने दिनों का अंतर पड़ रहा है। कोई प्रश्न पूछा, कोई सबूत मांगा, 24 घंटे का कोई सबूत नहीं है, 365 सही है, 354 सही, उसका कोई सबूत नहीं है। और 5000 के लिए सबूत मांगते हैं। वैसे हमारे पास सबूत है कि ये काल चक्र 5000 साल का कैसे है। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत के युद्ध को हुए कितने साल हुए? कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के लास्ट चैप्टर में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या है? होता है, होता है महाभारत, तो महाभारत काल पुनः आ गया ना। महाभारत के जो पात्रों का वर्णन है वो तो प्रैक्टिकल समाज में इस समय देख रहे हैं कि शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? बहुत है। दुर्योधन जैसे पात्र है या नहीं है? बहुत है। दुशासन जैसे पात्र है या नहीं है? तो जो भी महाभारत के पात्र है वो इस समय संसार में मौजूद है। तो हो गया 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है। और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है। तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम। तो हो गया 5000 साल। मायन संस्कृति का आप लोगों ने बहुत सुना, पिछले 2 साल पहले भारत में टीवी पर बहुत आया और उन्होंने तो डेट भी डिक्लेयर कर दिया था 21 दिसंबर 2012। कई लोग हमें भी पूछने आए थे, आप क्या समझते हैं 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी, सब विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा? हमने कहा था उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य के कहने पर सब कुछ होने लगे तो भगवान की वैल्यू क्या? तब कहा जाता है कि नर चाहत कुछ और होवत कुछ और, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। ईश्वर की चाहना कुछ और है। इसीलिए मनुष्य के कितनी भी प्रेडिक्शंस हो उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है, उसके पहले होता है या बाद में होता है। लेकिन मायन कैलेंडर के हिसाब से भी देखा जाए तो 5000 साल का चक्र है। 2 साल पहले मुझे मेक्सिको जाना हुआ था और मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे उसी स्थान पर जाना हुआ जहां ये मायन खंडर है। तो जब मैं वहां गई तो उस समय जो गाइड हमें वो मायन खंडर दिखाने के लिए लेके गया, वो गाइड जो था खुद मायन वंशज का था। वो सारा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा था, दिखा रहा था एक एक चीज। हमने उसको स्वाभाविक रीति से पूछ लिया कि भाई आप लोग ने तो कहा है कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं 2012 में लगभग मई जून में गई थी, तो कहा हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने कहा हमारे इंडिया के टीवी पर तो बहुत आ रहा है और लोगों में बहुत भय क्रिएट हो गया है। तो कहा ये हमने नहीं कहा है, ये फिल्म बनाने वालों ने इतना हाईलाइट किया है उस चीज को कि उन्होंने ये मना दृश्य दिखाना शुरू कर दिया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने कहा आप लोग ने कुछ तो कहा होगा। तो कहा हमने ये कहा है कि 21 दिसंबर 2012 को हमारा कैलेंडर समाप्त हो रहा है, 5000 साल का जो कैलेंडर है वो समाप्त हो रहा है और 22 दिसंबर 2012 से नया 5000 साल का कैलेंडर शुरू हो जाएगा। ये कहा है हमने। मैंने कहा फिर इतना सारा जो दिखाया है, तो कहा हमने ये जरूर कहा था कि उस समय में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होगी संसार के अंदर, और वो परिवर्तन की प्रक्रिया तो हम सभी देख रहे हैं। तो 5000 का वर्णन हर धर्मशास्त्र में किया गया है, लाखों साल का एक एक युग ये कोई धर्म नहीं कहता है। दूसरी बात कि 5000 साल का जब एक चक्र है, तो कई लोग हमसे पूछते कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है वो सही है कि गलत है? वो भी सही है। कैसे? जिस तरह दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे दिन और रात का चक्र कितनी बार घूम चुका है? 2014 साल से हम गिनती करते आए हैं, लेकिन उसके पहले भी ये चक्र चलता था या नहीं चलता था? दिन और रात का चलता ही था, हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ? चक्र तो चलता ही था। ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका है? अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, उसमें अगर पत्थर मिलेंगे तो वो भी सही है कि पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर एक काल चक्र 5000 साल का है ये भी सत्य है। और ऐसे 5000 साल का काल चक्र कितनी बार घूम चुका है ये भी सत्य है। अब ये चक्र किस तरह से चलता है, तो उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। भारत में हर शुभ कार्य के लिए स्वास्तिका लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए कि स्वास्तिका का अर्थ क्या है तो क्या कहते हैं? एक शुभ की निशानी है, या कहेंगे हमारे पूर्वज करते हैं इसलिए हमें करना है, बाकी उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हर शुभ कार्य के ऊपर यही निशान क्यों निकाला जाता है? इसका भी कोई तो अर्थ होगा। स्वास्तिक का शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है, यानी ये काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है। इसीलिए गीता के सार में ये बात लिखी होती है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं। तीनों घड़ी अच्छी है, जो बीत चुकी वो भी अच्छी, जो चल रही है वो भी अच्छी और जो आने वाली है वो भी अच्छी। इसीलिए कभी भी कोई भी शुभ कार्य पर स्वास्तिका निकालते हैं कि ये घड़ी भी शुभ है, डोंट हैव डाउट्स। मन में कोई संशय नहीं लाना कि पता नहीं ये घड़ी शुभ है या नहीं है। स्वास्तिका निकाल दिया, माना ये घड़ी भी शुभ है। भारत में अक्सर कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका निकालते हैं, उसके ऊपर कलश रखा जाता है और कलश के ऊपर नारियल होता है, श्रीफल उसको कहते हैं, श्रीफल होता है। भावार्थ ये, किसी भी पंडित को आप पूछेंगे ना ये क्यों करते, तो कहते करना पड़ता, आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। हम आपको बताते हैं अभी कैसे नहीं समझते हैं, क्योंकि वास्तव में वो खुद ही नहीं समझते हैं। खुद करते रहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। उनके पूर्वजों ने उनको बताया इसलिए करते रहते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। आध्यात्मिक भाव उसका ये है कि शुभ कार्य पर स्वास्तिका निकाला, माना ये घड़ी भी शुभ है। और ये बात को समझने के लिए कलश, हमारा इस सर का जो स्वरूप है ना कलश की तरह है, यानी ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर आप इस समय को देखेंगे तो आपको हर चीज उसमें शुभ नजर आएंगे। इसीलिए कभी भी कोई नेगेटिव सोचता है तो क्या कहते हैं, नेगेटिव नहीं सोचो, अच्छा सोचो ना, पॉजिटिव सोचो। आजकल के बच्चे भी माँ बाप को अगर नेगेटिव सोचते हैं तो क्या कहते हैं, अरे बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव सोचते हो, कहते कि नहीं कहते हैं? कि ज्ञान युक्त बुद्धि से, या बुद्धि या कलश की तरह है, उस ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये समय में क्या शुभ है। और अगर इस तरह से पॉजिटिव आप सोचेंगे तो उसका फल क्या होगा, फल क्या होगा, श्रीफल। श्रीफल यानी श्रेष्ठ फल, श्री माना श्रेष्ठ। अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव बुद्धि आपकी होगी और स्वास्तिका के इस समय को आप देखेंगे तो ये घड़ी भी सदा शुभ है, और वो शुभ कार्य करेंगे तो उसका फल हमेशा बहुत अच्छा होगा। इसीलिए स्वास्तिका, उसके ऊपर कलश और उसके ऊपर नारियल, नारियल से उसका मुंह ढक देते हैं। डोंट बी नेगेटिव, डोंट जेनरेट नेगेटिव थॉट्स, ऑलवेज जेनरेट पॉजिटिव थॉट्स, तो श्रेष्ठ फल अवश्य है ये। लेकिन आप किसी भी पंडित से पूछो तो आपको ये नहीं बताएंगे। इसलिए कहा भारत के अंदर इतनी अच्छी अच्छी प्रथाएं हैं जिसका आध्यात्मिक भाव अगर समझेंगे तो लगेंगे सचमुच हमारा भारत कितनी ऊंची संस्कृति का है। ये सर्व सभी जानते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति बहुत ऊंची है, लेकिन क्या ऊंची है ये समझ नहीं पाते हैं क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं। इसलिए वो जैसे कहते हैं सांप गया और निशान रह गए, ऐसे बस निशान रह गए, निशान के हिसाब से हमें करना है और करते रहना है, बाकी न सवाल पूछना है। और अगर सवाल पूछते तो कहते संशय नहीं करो, पाप लगेगा, डरा देते हैं, पाप लगेगा। अरे क्यों पाप लगेगा, अज्ञान को दूर करना तो हमारा धर्म है, हमें जानने की आवश्यकता है कि हम अज्ञानता से क्यों करें। इसीलिए कहा कि आप कभी भी कोई पंडित से पूछेंगे वो आपको नहीं बताएंगे, कभी पूछ के देखिएगा, बहुत आपको यही जवाब मिलेगा कि भई आप नहीं समझते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं इस बातों को, इस बात में टाइम वेस्ट नहीं करो, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आप बस जैसे हम कहते हैं वैसे आप करते रहो, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार जो सीन्स हमारे सामने आती है वो ऐसा प्रतीत होता है कि अशुभ है, उसको कैसे शुभ माना जाए। तब ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भी इस संसार में हो रहा है, जैसे मैंने कहा, कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन जब वो सीन आती है तब लोग अक्सर यही कहते हैं, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, भगवान ऐसा कभी किसी के साथ न करे, उसको कैसे शुभ माने। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे जिसका कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में थे। जब हमें पता चला तो हमने सोचा चलो मिलके आते हैं। जब मिलने गए तो काफी लोग वहां उनके पास थे। अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के ही कुछ शब्द कहना पड़ेगा। तो हमने उस भाई से कहा कि भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही, उस भाई को बहुत गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है, बहुत मतलब बोलने लगा। आश्चर्य लग रहा था हमें, क्योंकि कोई नास्तिक नहीं बोल रहा था, भगवान में आस्था रखने वाला, और आज उनके मुख से ऐसी बातें निकल रही थी, इसलिए आश्चर्य लग रहा था। आखिर हमें महसूस होने लगा कि जितना ज्यादा देर यहां खड़े रहेंगे यह भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, इसलिए बेटर है कि हम बाहर निकल जाएं। तो धीरे धीरे सरकते हुए हम बाहर आए तो उसकी पत्नी ने देखा हमें, वो तुरंत बाहर आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगी कि बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना, इस वक्त इनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करना। मैंने कहा इतना अच्छा भाई, एक कार एक्सीडेंट क्या हुआ कि इतना मानसिक असंतुलन आ गया। तब उसकी पत्नी ने कहा ऐसी बात नहीं है, फिर क्या बात है, इतना भगवान के लिए बोल रहे हैं। तो उसने बताया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, सबको मदद करते थे, कोई भी जाता था उनको जैसे निराश करके नहीं लौटाते थे, कुछ न कुछ मदद जितनी उनसे होती थी वो करते थे। लेकिन अब उनका वो गवर्नर का टेन्योर पूरा हो रहा है, और जब गवर्नर का टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, और उसको उस गैदरिंग में जाना था जहां उसका सम्मान होना था, जहां उसको अवार्ड मिलना था। लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हुए, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब 10 दिन के अंदर तो ठीक होकर के नहीं जा सकता है, इसीलिए वो बार बार जब सोचता था कि अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सब के बीच में मेरा सम्मान होता था, मेरा फोटो निकलता था, मुझे अवार्ड मिलता था, वहां से जब मैं वापस इंडिया आता था तो मुझे कैसे रिसीव किया जाता था, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये परिस्थिति उससे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और बार बार इसीलिए वो यही कह रहा था, बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा हर एक का भला का काम किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो तो उस समय कौन बता सकते हैं, कोई बता तो नहीं सकते हैं। हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया कि अरे भगवान को क्यों गाली देता है, कर्म का हिसाब किताब भी तो हरेक को अपना भोगना ही पड़ता है। उस भाई को और गुस्सा आया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था। अब उसका जवाब तो नहीं था, आखिर हम तो वहां से चले गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था तो सोचा चलो बाबा के घर का प्रसाद लेकर के जाते, सदगुरुवार का दिन है आज तो भोग लगता है तो भोग लेकर के जाते हैं। अब जैसे ही हम गए तो और कोई नहीं था हॉस्पिटल में, वो और उसकी पत्नी दो ही थे। तो हमें जैसे देखा तो कहने लगे, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा कि बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। खुद ही जवाब दे रहा है 10 दिन के बाद, 10 दिन पहले वो खुद ही प्रश्न कर रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आज खुद ही कह रहा है मैंने किसी का बुरा नहीं किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो आज मैं उसी फ्लाइट में जाता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, जीवन भी खत्म हो जाता था। फिर कहने लगा, देखो भगवान कितना दयालु है, आज मुझे महसूस होता है कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड दिया, एक नया जीवन दान दिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा तो उसकी पत्नी मुझे कहने लगी, बहन जी यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता था तो कितना अच्छा होता था, मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन गए ना ये 10 दिन गए, पता नहीं कितना भगवान को गाली दिया होगा। जो आता था भगवान का नाम लेता था बस उसके ऊपर गुस्सा हो जाना, हरेक की सहन शक्ति एक जैसी तो नहीं होती है, कभी कभी तो रिश्ते खराब होने जैसी स्थिति हो जाती, और मुझे उस वक्त इतना टेंशन होता था मैं एक एक को बाहर ले जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगती थी कि आप उसकी बात का बुरा नहीं मानना। तो बहन कहने लगी, मैंने जिंदगी में अपने कर्मों की माफी इतना किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मांगनी पड़ी, मेरे जीवन के दिन सबसे बुरे जो गए ना ये 10 दिन गए, तो ये ज्ञान 10 दिन पहले क्यों नहीं आ जाता है। मैंने कहा कि देखो बहन जी, गीता के सार में ये बात तो लिखी है, भगवान ने कही है, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला वो अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम नहीं कर पाते। भारतवासी की सबसे बड़ी खामी ये है कि विजडम पूरी दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है, लेकिन अज्ञानता भी कैसी चीज है कि उसका एप्लीकेशन हम न कर पाते हैं, इसलिए कितने दुखी होते हैं, कितने गुस्से में आते हैं, चिड़चिड़ापन में आते हैं, संबंध खराब कर देते हैं, बार बार भगवान को भी हम दोष देने लग, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। मैंने उस भाई को कहा, भाई साहब समय का शुक्र करो कि समय ने 10 दिन में पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा था वो बता दिया। जीवन में कई बार कई घटनाएं ऐसी होती है जिसका पर्दा समय एक साल के बाद खोलता, वो साल कैसा जाता है। सिर्फ इस एक बात को प्रैक्टिकल अप्लाई न कर पाने के कारण साल के बाद हम यही बात बोलते हैं, अच्छा हुआ था ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता, कहते हैं ना। तो साल के बाद जो बोलते हैं पहले ही बोलो ना, अगर पहले ही इसको अप्लाई कर दिया कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा, तो गुस्सा आएगा, टेंशन होगा। तो आधा स्ट्रेस अज्ञानता के कारण है, गुस्सा जो है अज्ञानता के कारण है, इसी एक बात का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने के कारण है। अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी उसी का नाम है कि जीवन में हर विजडम को अप्लाई करके देखो तो जीवन इतना सुंदर हो जाएगा। ये सवाल जो बार बार उत्पन्न होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसका जवाब मिल जाएगा कि जरूर मैंने अच्छा किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाएगा। कहते हैं ना, तो आज के बाद अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, हाँ करेंगे, करेंगे तो गुस्सा तो नहीं आएगा, बच जाएंगे, स्ट्रेस से रिलीव हो जाएगा और कुछ अच्छा है ये समझ में आएगा। लेकिन तब भी कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं कि नहीं नहीं बहन जी, कोई कोई घटनाएं तो ऐसी होती है जो ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, उसमें अच्छा भी नहीं समझ पाते हैं हम, मुझे याद आता है कि एक बार मेरा कार्यक्रम बॉम्बे में था और मुंबई में एक कंपनी में मेरा प्रोग्राम था 3 से 5 दोपहर के समय में। शाम का समय मेरा फ्री था तो एक परिवार वाले आकर मुझसे पूछने लगे, बहन जी अगर शाम को आप फ्री हो तो हम एक लेक्चर रखना चाहते हैं आपका, आप आएंगे? हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, सब आध्यात्मिक विचार वाले लोग रहते हैं, हम उनके लिए एक प्रवचन रखना चाहते हैं। मैंने कहा शाम का समय तो फ्री है मेरा, भले आप रख सकते हैं। तो खुश हो गए, बहुत खुश होकर के गए। 7 बजे उन्होंने टाइमिंग रखी, सबको इनवाइट कर लिया। अब जहां मेरा कार्यक्रम था 3 से 5, 5 बजे के बाद कुछ प्रश्न उत्तर हुआ, कुछ लोगों से मिलना करना था, तो 5:30, 6:15 हो गया। तो जो बहन मेरे साथ में थी वो कहने लगी, बहन जी अगर अब आश्रम जाएंगे और उसके बाद उनके घर जाएंगे तो बहुत, एक तो रास्ता भी लंबा है और ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है, कहीं ट्रैफिक जाम में अगर फंस गए तो 7 बजे हम पहुंचेंगे नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? कहा यहां से अगर सीधा चले तो। मैंने पूछा यहां से कितना दूर? तो कहा बस 10 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अगर जल्दी भी पहुंच गए तो वो माइंड नहीं करेंगे। मैंने कहा चलिए फिर। हम चले गए तो 6 बजे में वहां पहुंच गए। अब जब हम पहुंचे वहां पर तो देखा तो सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था। उन्होंने इतना जल्दी तो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 घंटा बिफोर आ जाएंगे हम। तो जैसे ही हमें देखा तो माँ बाप ने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद करो, तो बच्चों ने इशारा किया नहीं बंद नहीं करेंगे हम देख रहे थे। तो माँ बाप ने कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो, आजकल के बच्चों के आगे माँ बाप की कमी चलती है ना, तो कहा वॉल्यूम स्लो करो। तो वहां मान लिया, वॉल्यूम थोड़ा स्लो किया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी भी चल रही थी, उनका तो वॉल्यूम स्लो करा है, यहां माँ बाप हमसे बात करने लगे, कैसा रहा प्रोग्राम, क्या हुआ आदि पूछने लगे। तो जरूर है वो बच्चों को डिस्टर्ब तो होगा, कोई सीरियल चल रही थी। तो जो उनका सबसे छोटा वाला बच्चा था, 12, 13, 14 साल का होगा, वो आकर मुझे कहने लगा कि दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बड़ी अच्छी भाषा में उसने मुझे कह दिया चुप रहिए आप, मुझे भी हंसी आ गई। उसके बाद वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा कि ऐसा है कि ये सीरियल बहुत अच्छी है और आज का एपिसोड विशेष एपिसोड है, इसलिए हम उसको मिस करना नहीं चाहते। मैंने भी उसको कहा कोई बात नहीं, देखिए मैं साइलेंस में रहूंगी। अब शांति से बैठना था तो क्या करते हैं, मैंने सोचा देखे तो सही ऐसा क्या विशेष एपिसोड है इनका जो ये मुझे चुप करा रहे हैं। मैं देखने लगी, एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं था, कहानी क्या थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनका क्या अच्छा होता था या क्या सस्पेंस खुलता था, वो खुश हो जाते थे, बड़े अच्छे, बड़ा बहुत अच्छा करके कहते थे। क्या अच्छा हुआ हम तुमको तो समझ में नहीं आया कुछ भी। आखिर जब लास्ट में पूरा हुआ तभी भी कोई खास बात नहीं लगी मुझे, लेकिन वो बड़े खुश हो गए, आज बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। क्या अच्छा था, आखिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उस बच्चे को पूछकर बुलाया पास में और पूछा इसमें क्या अच्छा था। एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं, कहानी क्या थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी, तो क्या अच्छा था। तो बच्चा मुझे कहने लगा, दीदी आपने सारे एपिसोड थोड़ी देखे हैं, आपने यही पहला एपिसोड ही तो देखा, एक तो उसमें क्या समझ में आएगा, हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, तो हमको कनेक्शन समझ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, और इसीलिए जब हम पूरी कहानी के रूप में देखते तो हमें बहुत अच्छा लगा। इतना बोलकर वो तो चला गया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया। और उसके बाद मैं सोचने लगी कि ये 5,000 साल का चक्र अगर है तो उसमें हमारे भी कितने जन्म हैं, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। और आज का ये एपिसोड, इस जन्म का जो एपिसोड है, हमारे जीवन में भी एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य के साथ नहीं है। जीवन में कोई कहानी जैसा भी नहीं लग रहा है, लेकिन जीवन में हर दृश्य का कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा या नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। हमें भी सारे एपिसोड याद नहीं है, इसीलिए हम गुस्से में आकर कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा कि नहीं होगा। अगर हमें भी सारे एपिसोड याद होते थे तो शायद हम भी उन लोगों की तरह यही कहते थे, वाह बहुत अच्छा, क्या बात है, ईश्वर की क्या कहानी है, यही कहते थे। तो इसलिए आज के बाद, इसीलिए भगवान ने शायद सारे एपिसोड याद न रहे, क्योंकि उसमें कई दुख की बातें भी दिमाग में आ जाए और उसको डाइजेस्ट न कर पाए, इसलिए वो विस्मृति सहज हो जाए, एक जन्म पूरा होते ही विस्मृति हो जाए, ये रखा है सिस्टम। लेकिन हमें सार में गीता में कह दिया कि हे आत्मन, हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करो किसी बात की, निश्चिंत रहो। इसलिए आज के बाद ये जरूर समझ लो, जब भी जीवन में कुछ अगर बुरा दिख रहा है होते हुए, उसका कोई ना कोई एपिसोड के साथ जरूर कनेक्शन है। और टोटालिटी में अगर हम देखेंगे तो हमें शायद हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण नजर जरूर आएगा। अब ये स्वास्तिका किस तरह चलता है, सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग, ये समय का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है। इसी तरह ये काल चक्र भी कब शुरू हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन इसका पहला पहर सतयुग को माना जाता है, जहां स्वास्तिका का हाथ इस पोजीशन में है, राइट हैंड साइड इस पोजीशन में माना ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, कि जिस युग को कहा गया सत्यता का युग, जहां हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में है, सत्यता का युग। उस युग को दूसरे शब्द में कहते सूर्य वंश, कि जैसे सूर्य की कला कम जास्ती नहीं होती, ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है। उस युग के लिए बाइबल में, वैसे हर धर्म में एक बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान ने जब ये पहला पहर रचा था तो वो कैसा था, तो कहा गया है जेनेसिस चैप्टर 1 में कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, अपने जैसा बनाया था। गॉड मेड मैन कि सत्युग से पहले कलयुग है, कलयुग के अंदर मनुष्य है, तो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान भगवती के रूप में उनको बनाया था। हिंदू धर्म में भी इसीलिए कहा जाता है नर ऐसी करणी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करणी करे जो श्री लक्ष्मी बने। नर से सुनारायण, नारी से सुश्री लक्ष्मी। इसी तरह और ग्रंथों में भी ये बात आती है कि मानुष से देवता किए करत न लगी वार, भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगती है। हर धर्म में ये वर्णन आता है। हर धर्म में ये बात को जब कहा है, अब इस दुनिया को देखे वो दुनिया कैसी थी जहां ईश्वर का आशीर्वाद था, उस दुनिया को कहा गया सत्यता का युग, जहां प्रकृति मनुष्य आत्मा पशु पक्षी इतने शुद्ध और पवित्र स्वरूप में, सात्विक स्वरूप में, जहां सुख शांति करती थी बसेरा, और जहां हर आत्मा अपने समृद्ध स्वरूप में थे, पवित्र आत्माएं इस संसार में ऊपर से नीचे उतरती हैं, कोई न कोई देवी या देवता का रूप धारण करती है। और इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था? श्री नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सतयुग के राज्य करने वाले सत्य नारायण या सूर्य नारायण, यानी जो सूर्य वंशी है, इसलिए सत्य नारायण सूर्य नारायण कहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आता है, जिसको कहा जाता त्रेता, यानी थोड़ी त्रुटि आ गई, स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर नीचे उतरता है, यानी मनुष्य आत्मा 16 कला संपूर्णता से नीचे उतरते हैं, 2 कला कम हुई, पवित्रता सुख शांति समृद्धि इस दुनिया में भी है, लेकिन सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है। इसीलिए इस युग को कहा जाता चंद्रवंश, चंद्रवंश, जहां चंद्रवंशी आत्माएं थे। इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला श्री राम का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण और रामचंद्र। इसीलिए महात्मा गांधी ने राम राज्य का स्वप्न देखा भारत के लिए, कि सूर्यवंशी जैसा परफेक्शन तो नहीं ला सकते, लेकिन चंद्रवंशी जैसा तो हम ला सकते हैं। थोड़ी बहुत त्रुटि अगर रह गई तो कोई अर्जा नहीं, लेकिन राम राज्य तो बनाए। जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, यही गायन है। जहां शेर और गाय अगर एक घाट पर पानी पीते थे, पशु ऐसे थे, तो मनुष्य कैसे होंगे? सोचने की बात है, क्योंकि अगर मनुष्य के वाइब्रेशंस का प्रभाव प्रकृति के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर पड़ता है, आज की दुनिया में कहा जाता है, विज्ञान ये कहता है, तो उस समय अगर शेर गाय एक घाट पर पानी पीते हो, तो उस समय के वो दिव्य आत्माएं कैसे होंगे, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, वो इन्हीं दो युग का गायन है, जिसको स्वर्गीय समय कहा। लेकिन तब प्रश्न मन में आता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो सीढ़ी नीचे उतरना पड़ा? कोई कर्म करने की बात नहीं है, लेकिन संसार एक नियम में चलता है, और ये नियम है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। विज्ञान के अंदर थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एंट्रोपी, एंड द डेफिनेशन ऑफ लॉ एंट्रोपी इज एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज टू अ डिसऑर्गेनाइज स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, फिर अस्त व्यस्त हो जाती है। नए से पुराने ये प्रक्रिया स्वाभाविक है, पुराने से नया बनाना पड़ता है। मकान नया होता है, पुराना खंडर अपने आप हो जाता है, खंडर बनाया नहीं जाता है, खंडर अपने आप होता है। इसी तरह सिद्धांत यह है कि ऊपर से नीचे कोई भी चीज अपने आप गिरेगी, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। तो ये प्राकृतिक नियम है जो आत्माएं संपूर्णता से धीरे 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 करके उनकी कलाएं कम होते हुए त्रेता युग में आए, और त्रेता युग से द्वापर युग में आए, क्योंकि संसार में कोई भी चीज सदा स्थायी एक ही स्थिति में नहीं रहती है। पूर्णमासी कितना दिन रहता है? एक घड़ी, दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और अमावस्या में कितनी देर खड़े रहते हैं? एक घड़ी, फिर दूसरी घड़ी से उसकी पूर्णमासी की ओर। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसी तरह ये काल चक्र में भी चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है इस संसार के अंदर। इसलिए ये नहीं कह सकते सूर्यवंश से चंद्रवंश क्यों बने, किस कर्म से बने, नहीं, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी कि धीरे धीरे कला क्षीण होती जाती है और व्यक्ति उस ओर आगे बढ़ता जाता है। और इस तरह से धीरे धीरे तीसरा युग आया जिसको कहा जाता है द्वापर। स्वास्तिक का कहा तो जो ये पोजीशन में था द्वापर युग में ये पोजीशन में आ गया। और ये पोजीशन यानी मांगना, सत्यता और एकता यहां समाप्त होती है। द्वापर जहां से दो पुर आरंभ हुए, सत्य के साथ असत्यता का पुर आरंभ हुआ और असत्यता के कारण मतभेद होने लगे, मतभेद के कारण दुख अशांति आरंभ हुई। और तब कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को आए। संसार में दुख क्यों आया? क्योंकि सत्ययुग और त्रेतायुग जब सुख का पीरियड था उस समय भगवान को किसी ने याद ही नहीं किया, इसलिए दुख आया। अगर वहां याद करते थे तो दुख क्यों आता था? और तब भगवान से मांगना आरंभ करते, हे प्रभु शांति दो, सुख दो, प्रेम दो, आनंद दो, शक्ति दो। रोज मांगते हैं भगवान से, कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंक देगा और हम रिसीव कर लेंगे। संसार को एक नित्य प्रक्रिया से ही गुजरना है और इसलिए मांगने पर नहीं मिलता है, लेकिन समय का एक विधान है। ये जब ऐसा समय आया जब लोगों ने पुकारा, भगवान का आने का वक्त नहीं है, क्योंकि उनका आने का वक्त है घोर अधर्म का समय। अब द्वापर युग में तो शुरू हुआ अधर्म, तो उस समय उसका आने का वक्त नहीं है। इसलिए उस समय कुछ महान आत्माएं इस संसार में आती है, लेकिन परमात्मा का परिचय किसी को नहीं है। इसलिए भगवान को कहां ढूंढते हैं? तो सतयुग और त्रेता युग में जो देवी देवताएं हो गए उनको ही भगवान मान लिया। जैसे आज की दुनिया के अंदर कई संतों को भगवान मान करके उनकी भी पूजा लोग कर रहे हैं। अब थे तो हमारे जैसे मनुष्य ही, साईं बाबा हमारे जैसे ही थे, इसी युग में हुए, फिर हम उसकी मंदिर बनाकर पूजा क्यों करते हैं? तो लोग यही कहते हैं हमसे वो अच्छे थे, हमसे वो श्रेष्ठ थे। इसीलिए ठीक इसी तरह द्वापर से जो श्रेष्ठ देवी देवताएं थे सतयुग और त्रेतायुग के, श्री लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता, ये देवी देवताएं जो होकर के गए इसी भारत भूमि पर, उनके ही मंदिर बना करके हमने उनकी पूजा आरंभ कर दी, क्योंकि भगवान का सत्य परिचय तो था नहीं किसी के पास। तो इसी युग के अंदर जब मनुष्य ने भगवान से मांगना आरंभ कर दिया, भगवान का परिचय न होने कारण हम उन्हीं देवी देवताओं के प्रतिमा रखते हुए, स्मृति ताजी होने के कारण उनके प्रतिमा के मंदिर बनाते हुए उनको भगवान मान करके पूजा करने लग पड़े। जो देवी देवताएं इतने दिव्य स्वरूप और श्रेष्ठ स्वरूप में थे, द्वापर युग में जब आते हैं तब देह अहंकार के वश हो जाते हैं। इसी युग में शास्त्रों का निर्माण हुआ, मंदिर बनाए गए, पूजा के रीत रसम रिवाज आरंभ हुए, ये सब इसी युग में हुआ। और भगवान समझ करके उन देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अब भगवान अपने बच्चों की प्रार्थना को अनसुना तो नहीं करेगा, लेकिन उनका आने का वक्त नहीं है, इसलिए उस वक्त संसार में कुछ महान आत्माओं को भेजते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत बताए उस पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया। कोई धर्म बुरा कर्म करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म पाप करना नहीं सिखाता है, कोई धर्म झूठ बोलना नहीं सिखाता है। तो ओरिजिनल धर्म के सिद्धांतों को अगर देखा जाए तो एक जैसे है, लेकिन जिस स्थान पर ये लोग गए वहां के समाज की जो रचना थी उसके हिसाब से उन्होंने प्रचार किए, वो प्रचार अलग अलग थे। जैसे इब्राहिम जो मिडिल ईस्ट की तरफ गया, इब्राहिम जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसके बाद महात्मा बुद्ध जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसके बाद क्राइस्ट जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ये आत्माओं ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन हमेशा भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जिस समाज में वो गए थे, उस समाज की हालत को देखते हुए उन्होंने जो प्रचार किए, वो प्रचार अलग अलग हो गए। जिसके आधार पर लोग लड़ रहे हैं कि मेरा धर्म तेरा धर्म, उन प्रचारों के कारण। जहां इब्राहिम गए थे वहां के समाज की हालत क्या थी, तो उस समाज में जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे, तो उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए जो आज भी उनके पवित्र धर्म पुस्तक में लिखे हुए थे। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं। इसी तरह जहां महात्मा बुद्ध गए थे, उस समाज की हालत कैसी थी, उन्होंने दो बातों को देखा जिस पर उन्होंने अपने प्रचार आरंभ किए। कौन सी बात देखी? पहली बात कि मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है और कर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने प्रचार में यही कहा, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो और कर्म ही धर्म है। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने भी इस बात को समझा नहीं। जो दया, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने के लिए कहा, लेकिन आज भी अगर कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते ये लोग, क्या खाते हाँ? जो दुनिया में कोई नहीं खाते ना, वो ये लोग खाते हैं। हाँ, आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता। कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी, तो जैसे बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है, जहां बेलपुरी पानीपुरी आदि के स्टॉल लगे रहते हैं, ऐसे ही हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर थी, जहां अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए। आजकल तो वहां से वो हटा दिया गया, लेकिन एक समय था, आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात मैं करती हूँ, जब वहां गई थी, तो हमारा एक कार्यक्रम था एक आइलैंड पर, तो हमें गाड़ी पार्क करके बोट लेनी थी। तो जब उस चौपाटी से गुजरना हुआ, तब हमने देखा, और वो दृश्य मुझे कभी भूलता नहीं है, एक स्टॉल पर देखा रंग बिरंगी सांप लटक रहे हैं और बड़े तवे पर रखे उसको फ्राई किया जा रहा है और लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। कहीं देखा तो खेखड़े के बड़े बड़े खेखड़े तले जा रहे थे, कहां देखा तो बिच्छू की सब्जी पकाई जा रही थी, कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। क्या क्या खाते हैं लोग, कहां देखा तो कुत्ते का गोश्त उबल रहा था। ये सारा चीजें देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस, इस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं। महात्मा बुद्ध को इतना मानते हैं चाइनीज लोग, गली गली में आपको महात्मा बुद्ध के मंदिर मिलेंगे। महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। जैसे भारत वाले गीता को मानते हैं, पूछते हैं, गीता की नहीं मानते। आजकल तो आप लोग ने देखा होगा ताइवान के अंदर मनुष्य के बच्चे, 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है $2000 में, और उस छोटे से बच्चे को पकाया जाता है, उसको तला जाता है, उसको बेक किया जाता है, और आज का मनुष्य ऐसा हैवान बन गया है कि उसको खाने में भी हिचकिचाता नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है ही नहीं, लेकिन आज मनुष्य को मनुष्य के प्रति भी दया भाव नहीं है। इसी तरह जहां क्राइस्ट गए थे वहां के समाज की हालत क्या थी, तो उन्होंने भी दो बातों देखी जिस पर उसने प्रचार किए। कौन सी दो बातें देखी? एक तो मनुष्य जीवन में प्रेम नहीं, नफरत इतनी भर गई है और इतना झूठ बोलने लगा है। तब उसने प्रचार किया प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने भी इस बात को समझाने और जो प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले जीसस के साथ क्या किया, नफरत पूर्ण व्यवहार करके उसको ही क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते हैं तो बाकी किसको बख्शेंगे। और इसीलिए जहां पर भी ये वेस्टर्न दुनिया के लोग चले गए, गए थे व्यापार के लिए, भारत में भी आए थे व्यापार के लिए, लेकिन यहां आने के बाद क्या किया, नफरत के बीज बोए। नहीं तो आप सोचो, भारत की संस्कृति ये थी कि गांव में अगर किसी एक के घर में कुछ हो जाता था तो भी सारा गांव पहुंच जाता था, इतना भाईचारा प्यार था। वहां उन्होंने नफरत के बीज बोए, भाई भाई को लड़ाया, राजाओं को प्रजाओं से लड़ाया, प्रजाओं को राजाओं से दूर किया और पूरे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दो टुकड़े कर दिए देश के, भाई भाई को अलग किए, नफरत के बीज बोए। और ऐसे नफरत के बीज बोए जो कभी समाधान हो ही नहीं सकता है किसी बात को लेकर, क्योंकि कारण हो तब तो निवारण हो, कारण ही नहीं तो निवारण कहां से हो सकता है। भारत पाकिस्तान की खाली बात नहीं कर रही हूं मैं, ये लोग दुनिया में जहां पर भी चले गए उस देश का दो टुकड़ा अवश्य हुआ, कहीं नॉर्थ साउथ हुआ, कहां ईस्ट वेस्ट हुआ, दो टुकड़ा अवश्य हुआ है या दो देश के रूप में अलग अलग हो गए। इसलिए कहा कि अफसोस, इस समाज के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। अंग्रेजों की पॉलिसी ही अलग थी, झूठ और नफरत के बीज वाली। और इस तरह से ये सारा संसार में धर्म भेद, भाषा भेद, भेद सारे आरंभ हो गए। और चौथा युग आया जिसको कहा गया कली युग, कलह क्लेश वाला युग, जहां स्वास्तिक का हाथ ऊपर उठता है, लेफ्ट हैंड ऊपर उठे, यानी क्लाइमेक्स, बुराइयों की क्लाइमेक्स की स्थिति। राइट हैंड राइटियसनेस का प्रतीक है, लेफ्ट हैंड अनराइटियसनेस का प्रतीक है। त्रेता युग तक राइट हैंड साइड पर रहा यह हाथ स्वास्तिका का, लेकिन कलयुग में जब हाथ ऊपर उठता है, यानी हर बात अपनी, हर बुराई अपनी क्लाइमेक्स की स्थिति को प्राप्त कर लेती है, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति दुराचार, अति पापाचार, अति भ्रष्टाचार, अति की स्थिति हो जाती है। कि जहां दूसरे शब्द में कहे तो ये रावण राज नहीं तो क्या है, है ना? इसको रावण राज्य क्यों कहते हैं? जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं था, तो जहां रावण राज्य है वहां राम राज्य नहीं है। आज की दुनिया रावण राज्य है, क्यों? क्योंकि रावण के लिए कहा जाता है कि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास, विद्वान था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, उसके पास ब्रह्मास्त्र, दिव्य अस्त्र प्राप्त थे उसको, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र प्राप्त थे उसको। रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, खूब भक्ति तपस्या करता था। और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी। तो जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। लेकिन उसके बाद भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ, दो बातों की कमजोरी थी उसके अंदर। कौन सी दो बातें? अहंकार चरम सीमा पर था और दूसरा अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता आ गई थी। आज की दुनिया को रावण राज्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसी बुद्धि किसी प्राणी में नहीं है। विज्ञान इतना तरक्की कर चुका, हवा में आकाश मार्ग से उड़ने लगा, रावण की तरह समुद्र के भीतर जाने लगा, तैरने लगा। रावण राज्य ही तो है। रावण जैसा बुद्धिशाली, मनुष्य जैसा बुद्धिशाली विद्वान कोई नहीं। रावण जैसा शक्तिशाली, आज मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई प्राणी नहीं। मिसाइल पावर है उसके पास, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र है उसके मिसाइल्स के नाम। रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं। आज मनुष्य जैसा भक्त कोई नहीं। गली गली में मंदिर मिलते हैं, एक ही गली में 10 मंदिर होते हैं। और रावण जैसा धनवान तो आज मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में बड़े शहरों के नजारे अगर देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। लेकिन आज मनुष्य भी किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी वही दो कमजोरी आ गई है। अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है और चरित्र भ्रष्टता, अनैतिकता उसके जीवन में आने लगी है। तो रावण राज्य है या नहीं है? रावण राज्य है। जब राम राज्य था तब रावण राज्य नहीं था, जब रावण राज्य है तब राम राज्य नहीं है। इसीलिए दिखाते हैं कि रावण का राज्य कहां था? लंका में था, जहां चारों ओर पानी और बीच में लंका। तो आज पृथ्वी को अगर देखा जाए तो तीन हिस्सा पानी और एक हिस्सा जमीन, तो एक टापू ही तो हो गया है। दुनिया छोटी हो गई है, आईटी की दुनिया में छोटी बनती जा रही है। रावण राज्य ही हो रहा है। तो इसीलिए कहा कि मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं है। रावण राज्य, राम राज्य नहीं है ना? तो राम को भी आना पड़ेगा रावण राज्य को खत्म करने के लिए। जहां हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करता है, किसी को व्यसनों का बंधन है, किसी को बुरी आदतों का बंधन है, किसी को बुराइयों का बंधन है, विकारों का बंधन है, जहां हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा पर है और मनुष्य आत्मा गुलाम बन चुका है। खाली कर्मेंद्रिय का गुलाम नहीं है, विषय विकारों का गुलाम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय उसकी गुलामी में आ गया है। मोबाइल साधन है, विषय है, लेकिन उसका गुलाम बन गया है। मोबाइल बहुत अच्छा साधन है, उसका प्रयोग जरूर करो, लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं करो। कई लोग उसकी गुलामी को स्वीकार करने लग पड़े हैं। न खुद का परिचय है, न खुदा का परिचय है। भगवान को कहां ढूंढ रहे हैं? कहां देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है। किस किस की पूजा करने लग गया? यही अधर्म का कारण बनता जा रहा है। अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया, इसीलिए कहा कि गुलामी में आ गए, विषय विकार, विषय यानी चीज साधनों के वश हो गया है। साधनों के बिना नहीं चल, साधन बहुत अच्छी चीज है। आज अगर ये साधन न हो तो मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकूं। मालिक बन के प्रयोग करो, गुलाम नहीं। गुलामी किसको मैं कहती हूं? कि जैसे मोबाइल है आपके बात करने के लिए है, लेकिन आजकल मनुष्य खाना खाने बैठता है ना, वहां भी मोबाइल चल रहा है। खाना भी खा रहा है, शांति से खाना नहीं खा पा रहा है। सामने वाला अगर टेंशन दिला रहा है तो गुस्सा भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है। अब वो खाना कितना हजम करेगा, ये गुलामी नहीं तो क्या है? अरे यूज करो, बुरी चीज नहीं है, लेकिन मालिक बन के यूज करो। बी ए मास्टर, डोंट अलाउ दिस थिंग्स टू मास्टर योर लाइफ। वो आपके मास्टर न बन जाए। कई लोगों को देखा बाथरूम में भी लेके जा रहे हैं। अरे जहां अपना पर्सनल क्रिया करनी है वो तो शांति से करो, वो भी शांति से नहीं है। ऐसी क्या गुलामी? तीन जगह ऐसी है जहां मोबाइल का मुंह बंद रखना ज्यादा उचित रहेगा। एक तो खाना खाने बैठो, स्विच ऑफ करो। खाना खाना बैठो, शांति से खाना चाहिए। बहने क्या कहती है, शांति से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हाँ, क्या कर, बहने जरूर एक्सेप्ट करेंगी क्योंकि भाई लोग उस समय खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं समझते ही नहीं क्या खा रहे हैं, है ना। शांति से खाओ, भगवान की याद में खाना खाओ, उस समय उसकी गुलामी में मत आओ। बहुत परेशान कर देंगे आपके जीवन को, आपके जीवन को जीवन नहीं रहने देंगे। इसलिए खाना खाने समय एक बात याद रखो, उसका मुंह बंद रखो। दूसरा, जब नहाने जाओ तो मोबाइल साथ में लेके नहीं जाओ, बाहर छोड़ करके ही जाओ। अरे जिसको इतना अर्जेंट काम होगा बाद में कर लेगा ना। और तीसरा, जब ऐसे सत्संग में बैठे हैं ना तब तो जरूर बंद रखो, नहीं तो हम यहाँ स्टेज से जब देखते हैं ना, जब एक का भी मोबाइल बजते दूसरे लोग इतना ध्यान से सुन रहे और वो मोबाइल बजता है तो सबका चेहरा ऐसा हो जाता है, इतनी घृणा आती है उस व्यक्ति के ऊपर कि कहाँ ये बज रहा है, बंद करो ना, बंद करो ना, ऐसे कहते एक दूसरे को उस वक्त। भाई अच्छी बातें सुनने का मौका कभी कभी जीवन में मिलता है और उस समय भी वो आपको डिस्टर्ब करे, आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। इसलिए तीन जगह ऐसी है जहां इसका मुंह बंद रखना ज्यादा उचित। बाद में बात कर लो ना, मिस कॉल पड़ा होगा साइलेंस पर रख दो, बाद में बात कर लो आप, कौन मना करता है। तो मालिक बन करके जियो, गुलाम बन करके नहीं। ठीक है, सही कहा नहीं? हाँ? अच्छी बातें जो है उसको धारण करो। कई लोग हमें कहते हैं जब से मोबाइल आया ना जीवन इतना हराम कर दिया है हमारा, सोना हराम हो गया है, खाना हराम हो गया है, जीवन जीवन नहीं रहा है। इतना लोग हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगे। पहले लाइन लाइन थी या फोन नहीं थे तो भी काम तो होता ही था। कौन कहता काम नहीं होता था, काम तो होता ही था। लेकिन मोबाइल आने के बाद जो है जैसे जीवन जीवन नहीं रहा, ऐसे आपके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग भी मोबाइल यूज करते हैं लेकिन ऐसी गुलामी नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी गुलामी को स्वीकार नहीं करो। और जब ये बात कहते कि आज साधन विषय विकार न खुद का परिचय है, न खुदा का परिचय है, न आध्यात्मिकता का आचरण है जीवन के अंदर, तो यही बताता है कि समय कितना अधर्म की ओर आगे बढ़ गया है। कलयुग का भी अंत समय आ गया है। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी तो कलयुग बच्चा है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है। हाँ, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। अरे शास्त्रों में तो लिखा है 4,32,000 साल पड़े हैं, उसमें से 40,000 खाली गए, बाकी समय बाकी है। अब सोचने की बात है, खाली 40,000 अगर गए और बाकी समय बाकी हो तो ये दुनिया की हालत क्या हो जाएगी? थोड़ा तो दुनिया को देखते हुए, साइंस को समझते हुए तो कम से कम ये बात को समझो। वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना। दूसरा गीत भी मुझे याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, हा? क्या कह गए, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या क्या होगा, वो सारी निशानियां बताई है कि कलयुग के अंत की निशानी क्या होगी, वो सब वर्णन की हुई। लेकिन जब ये बात को देखते हैं तो वो उसके हिसाब से तो अभी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। इसलिए कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। अब कलयुग ज्यादा समय नहीं चलने वाला है, अब थोड़ा सा ही बचा है। तो कई लोग हमें पूछते हैं फिर कितना साल बाकी है, फिर कितना साल बाकी है। हम कहते हैं भगवान ने सारा ज्ञान दिया लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया जो डेट नहीं बताई हमको, क्योंकि अगर किसी को कहा जाए कि भाई 24 घंटे के बाद तुम्हारी मृत्यु है, जितना पुण्य कर्म करना है कर लो, भगवान का नाम लेना है तो ले लो, कितना भगवान का नाम ले सकेगा? टाइम कॉन्शियस हो जाएगा, गॉड कॉन्शियस नहीं हो सकता है। एक एक घड़ी बीतेगी सोचेगा कितना बाकी रहा, कितना बाकी रहा, है ना। तो टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। उसको कहो चलो तू भगवान में अपना मन नहीं लगा सकता है, कोई बात नहीं, तेरे पास जो कुछ भी है दान करके पुण्य तो कमा ले। कितना दान करेगा वो भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद नहीं मरा तो डाउट है ना, समय पर भरोसा नहीं है उसको। अगर बच गया तो न दान करके पुण्य कमा सकता है, न भगवान का नाम ले सकता है। और इसीलिए भगवान ने यही कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। अब तो साइंटिफिक प्रूफ जो आपके सामने है वो भी स्पष्ट कर रही है कि अब दुनिया ज्यादा साल चलने वाली नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से कि ओजोन लेयर का होल इतना बढ़ गया है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना होल हो गया है, जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी के ऊपर आ रही है और अनेक प्रकार की नई नई बीमारियां सुनने को देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है। कुछ समय पहले यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था और उनके चर्चा में एक बात बहुत सुंदर हमें जानने को मिली। और जब वो सारी हिस्ट्री बता रहे थे तो हमने उनको स्वाभाविक रीति से पूछ लिया कि जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितने परसेंटेज में फॉरेस्ट होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए कि तभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा जिससे ये जो है लोग सरवाइव कर पाए। तो हमने उनको पूछा कि कितने फॉरेस्ट है, तब उन्होंने कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गया तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अब 11 से 9 कितना दिन में होगा, कितना समय लगेगा, लाखों साल लगेगा। इसलिए आज रात्रि के समय में ही लोगों को साइलेंट अटैक आते हैं, नींद में ही अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, अस्थमा अटैक। रात्रि के समय में लोग डेस्परेट हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा, उन्होंने कहा रात्रि के समय जब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींच लेते हैं तो उस समय वातावरण के अंदर खाली 2% ऑक्सीजन होता है, विच इज नॉट इनफ। और वो भी अगर खिड़की दरवाजा सब बंद करके व्यक्ति सोता है तो ऑक्सीजन कहाँ रहता है। इसलिए अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। और सुबह के समय में 3 से 4 का जो समय होता है, उस समय इतना कम ऑक्सीजन होता है तो उसी समय अटैक आ जाता है। इसलिए साइंटिफिक प्रूफ्स ये बताती है कि जिस तरह से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ रही है, जिस कारण बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप चल रहे हैं, ज्वालामुखी फट रही है, सुनामी लहरें उठ रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, और जो मिसाइल बनाए हैं वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, उन मिसाइलों का प्रयोग होगा या नहीं होगा, सब कंप्यूटराइज कंट्रोल है, कंप्यूटर का बटन दबाने की देरी पर है कि मिसाइल शुरू हो जाएंगे। आप सोचो कि जो व्यक्ति सारा समय वहां बैठता है कंप्यूटर के पास देखने के लिए कहीं से आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, एक दिन अगर उसको सिज़ोफ्रेनिक अटैक आए, घर में झगड़ा हुआ हाँ, और टेंशन में आ गए और उसको लगेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। इसलिए कहा मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, नर चाहत कुछ और होवत कुछ और, होना तो कुछ और ही है। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, ऐसे समय में ही भगवान को भी संसार में आना पड़ता है। और भगवान आकर के क्या करते हैं, जो भगवान ने वायदा दिया है यदा यदा ही धर्मस्य, संसार में भी भारत में भी एक साधारण तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देकर के अब यही कहते हैं चलो बच्चे अब वापस घर चलने का समय आ गया है, बहुत समय जी लिया, अब घर चलो, फिर वापस नई दुनिया जब बनेगी तब वापस इस संसार में आना है ना। इस समय भगवान आकर सिर्फ दो बातें कहते हैं, कौन सी दो बातें कहते हैं, लेकिन अफसोस आज का मनुष्य भी इन दो बातों को समझ नहीं पाता है। क्या कहता है भगवान, दो बातें सिर्फ यही कहता है, आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन अफसोस आज के समाज के लोग क्या कहते हैं, बहन जी सारे लोग अगर पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमारा थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको पता है दुनिया कैसे चलानी है, हम उसकी चिंता क्यों करें, है ना। समय के संकेत को भी समझने की आवश्यकता है। कुछ समय पहले मेरा एक कार्यक्रम था, एक शहर में काफी लोग आ रहे थे, उस कार्यक्रम में सप्ताह थी, 7 दिन का प्रवचन माला ऑर्गेनाइज किया था, काफी लोग आ रहे थे, लास्ट डे जो है फीडबैक सेशन था। तो एक बुजुर्ग भाई जो रोज आता थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। हमने कहा आइए, स्टेज पर आए और उन्होंने कहा कि पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान 7 दिन लगातार सुना और इनकी एक एक बात में इतनी सच्चाई है, लेकिन आज दिन तक हम इनसे दूर भागते रहे क्योंकि इनके बारे में कुछ गलत फहमी समाज में ऐसी फैली हुई है, भ्रांतियां हैं, जिस कारण हम दूर भागते रहे। हमने उनको पूछा ऐसी कौन सी बात है जिस कारण आप दूर भागते रहे, तो कहा ब्रह्मा कुमारियों के बारे में समाज में यही कहा जाता है कि ये लोग भाई बहन बना देता है। अब ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसी को भाई बहन बनाने की, आप लोगों को भी कहा होगा वहां जा रहे ठीक ठाक वापस आना, कहा अरे ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसी को भाई बहन बनाने की, हम किसी को नहीं बनाते हैं। आप लोग सभी मंदिर में गए होंगे, मंदिर में जाकर के आप सबने एक प्रार्थना जरूर गाई होंगी, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव दिया तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये प्रार्थना गाई है कि नहीं गाई है, सभी ने गाई है या सिर्फ भाइयों ने गाई, बहनों ने कुछ और गाया कि मेरे पति के मात पिता तो मेरे सास ससुर का, कभी भगवान को ऐसा, जब आप ये प्रार्थना गा रहे थे तो कौन बन गए थे, ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करें, हमने तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं सिखाई कि जहां आप भाई बहन बन जाओ। तो ब्रह्मा कुमारियों के बारे में गलत फहमी, हाँ हम ईश्वर का संदेश जरूर देते, करना न करना आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम ऐसी अफवाहें तो नहीं फैलाओ कि जिसको करना है वो तो कर सके, अपने जीवन को शुद्ध कर सके, क्योंकि समय का संकेत भी यही है। आज समय संकेत दे रहा है कैसे कि दुनिया में नंबर 1 पर जो बीमारी चल रही है कौन सी है, एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। समय भी संकेत दे रहा है कि अगर आत्म संयम को धारण नहीं किया जीवन में तो ये बीमारी का शिकार अवश्य बनेंगे और बन रहे हैं, नंबर 1 पर ये बीमारी चल रही है आज, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो समय का संकेत तो समझो, ब्रह्मा कुमारियों का संकेत न समझो, तो समय का संकेत तो समझो। अखबार तो रोज पढ़ते हैं, अखबार में एक खबर हर रोज छपती है, हर अखबार में छपती है, कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य, छपती है कि नहीं छपती है। और आपका विवेक क्या कहता, आने वाले समय में ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। उस समय आत्मरक्षा का साधन क्या है? कोई व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। शास्त्रों में दिखाया गया है कि रावण इतना शक्तिशाली था, जिसने श्री राम को ललकार दिया, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका, जो उठा करके सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया कि हे रावण, इस घास के तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी शक्ति है। कौन सी शक्ति थी उसके पास? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, जिस कारण रावण जैसा शक्तिशाली भी उसको स्पर्श तक नहीं कर सका, अपने महल में नहीं ला सका। कहने का भावार्थ, परमात्मा को कहा गया है जानी जाननहार है, वो सब कुछ जानता है। क्या जानता है? आने वाले समय को जानता है, कि आने वाला समय कौन सा है और उस समय में आत्मरक्षा का साधन क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि यही एक कवच का कार्य करेगा, जो ऐसे अनेक प्रकार की बुरी मनोवृत्तियों के लोगों से आपको बचाएगा। ये ब्रह्मचर्य व्रत ही एक ऐसा कवच कि कोई रावण जैसा रावण भी आ जाए तो आपको स्पर्श न कर सके, हिम्मत न हो सके। कई लोग हमसे पूछते हैं, भगवान ऐसे समय पर मदद क्यों नहीं करता है? भगवान मदद करना चाहता इसीलिए कहता है, इसीलिए कहता है, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है, उसकी मदद को स्वीकार करने की पात्रता चाहिए। अगर पात्रता नहीं है तो उसकी मदद को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैसे दुनिया में कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है, ऑर्डिनरी बर्तन होता है तो बर्तन फाड़ देता है, इतना पावरफुल वो दूध होता है। ठीक इसी तरह परमात्मा की मदद स्वीकार करने की अगर पात्रता नहीं है तो मदद को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है, प्रॉब्लम को भी जानता है तो सॉल्यूशन को भी जानता है। इसीलिए वो सॉल्यूशन बता रहा है, करना न करना आपके ऊपर। बाद में भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु तूने बचाया क्यों नहीं, वो इसीलिए कह रहा है समय को देखते हुए। तब कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, फिर दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया को चलाने का ठेका सारा प्लानिंग उसके पास है। आज से 2000 साल पहले जीसस का जन्म कैसे हुआ? अगर 2000 साल पहले की बात है कि अगर एक कुमारी मेरी बिना किसी भोग बल को जीसस को जन्म दे सकती है, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। आज भी उसको मदर मेरी के रूप में पूजा जाता है। क्यों? इसीलिए, क्योंकि वो पवित्र थी। तो 2000 साल पहले भी पवित्रता की शक्ति से बच्चे पैदा होते थे। आने वाले सतयुगी दुनिया में भी वो विधि है। हमारे शास्त्रों में बात है कि पांडव और कौरवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मंत्रों के बल से। यानी एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से संतान उत्पत्ति होती थी। पांडु धृतराष्ट्र विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, दृष्टि के बल से। यानी संसार में एक ऐसा समय भी था जब दृष्टि के बल से उत्पत्ति होती थी। श्री राम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यज्ञ के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था कि यज्ञ से संतान उत्पत्ति होती थी। से कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी, योगेश्वर जिसको कहा योग बल से उत्पत्ति हुई। यानी संसार में समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य बदलता रहा है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, बाकी सदा काल ये संसार भोग बल से नहीं चलता है। और इसलिए आने वाले समय के लिए भगवान के पास पूरा प्लानिंग है कैसे ये दुनिया को चलाना है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया, क्लोनिंग करते हैं, पवित्र विधि है, ये कोई भोग बल की विधि नहीं है। और अभी तो लेटेस्ट जो डिस्कवरी हुई है मेडिकल साइंस की वो यही है कि नारी अपने आप में संपूर्ण है, नारी के बोन मैरो में ही स्पर्म भी तैयार होते हैं, वो अपने आप में संपूर्ण है संतान उत्पत्ति के लिए। ये लेटेस्ट डिस्कवरी चैनल के ऊपर मेडिकल साइंस का रिपोर्ट है, आप चाहे तो देख सकते हैं, आप चाहे तो इंटरनेट में जाकर के उस चीज को सर्च कर सकते हैं कि कितना मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया और क्या क्या प्रूव किया है। ये मैं नहीं बोल रही हूं, मेडिकल साइंस बोल रहा है। और इसी तरह भगवान, फिर भी कई बार कई लोग कहते हैं क्या प्रूफ है कि पवित्र विधि से संतान उत्पत्ति होती है। भगवान जानते थे कि मनुष्य है ना, कलयुगी मनुष्य हर बात में प्रूफ जरूर मांगेंगे, इसीलिए आज भी उसने एक पक्षी रखा है जो पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। मोर का पक्षी अगर कलयुग में भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है, तभी तो श्री कृष्ण के ताज में मोर का पंख सुशोभित है। ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया गया है, ये श्री कृष्ण ने सम्मान दिया है कि जितना परम पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है उतना ही ये पवित्र पक्षी भी पवित्र है जो कलयुग में भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसलिए उसको सम्मानित किया है श्री कृष्ण ने अपने ताज में सुशोभित करके, ये डेकोरेशन के लिए नहीं है। अगर एक पक्षी कर सकता है तो क्या मनुष्य आत्मा ही नहीं कर सकते हैं? इसलिए कहा कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी किस्मत आपके हाथ में। किस्मत, पता है किस्मत कैसे बनती है? किस्मत कैसे बनती है? कैसे बनती है किस्मत? किस्मत, अब यहां पर आपको आने के लिए कई बार कहा गया होगा, माउंट आबू जाओ, माउंट आबू जाओ। हर बार कोई ना कोई काम आ जाता था, कुछ ना कुछ। क्या कहते थे जब भी आपको निमंत्रण दिया तभी क्या कहा? भगवान की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे। कहा ना यही? अभी जो आए किसकी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से? ऊपर वाले की। अब यहां से जाएंगे तो किसकी मर्जी पर चलेंगे? हाँ, किस मत पर चलेंगे? ऊपर वाले की मर्जी क्या है पता चली? फिर ये नहीं कहना कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती है ना। योगी बनो, पवित्र बनो, उस बात को जीवन में धारण करना, ये है ऊपर वाले की मर्जी। तो इसीलिए अब आपका ऊपर फैसला है, क्योंकि भगवान का जो नई दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट का कार्य जो है वो इलेक्शन से नहीं चलता है, सिलेक्शन से चलता है। उसने जरूर आप में कोई ना कोई इतनी खूबी देखी होगी तो आपको सिलेक्शन की लिस्ट में तो ले लिया कि नई दुनिया में ये आत्मा के अंदर ये खूबी है, उसको ले लो, स्वीकार कर लो। लेकिन अब आपकी मर्जी होगी कि आपको इस सिलेक्शन में रहना है या निकल जाना है। ये किसकी मर्जी होगी? आपकी मर्जी होगी। इसलिए कहा किस्मत आपके हाथ में है। ठीक है? ठीक है, अच्छा।